ओम शांति। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी के बीच में आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं और हम सब एक बार ताड़ी बजा करके आपका आभार व्यक्त करेंगे। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1960 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके ही लौकिक घर में शुरू हुई तथा बचपन से ही आपने योगी जीवन जीने का संकल्प लिया। आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अथक सेवाएं देते रहे। आप 1976 से दीदी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरली को कंपोज करने की तथा ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन्स के रूप में विशेष पॉइंट्स के द्वारा सर्व ब्राह्मण परिवार को विशेष सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ग्राम विकास प्रभाग का आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मूली श्रवण के साथ टाइप करके विश्व के कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। आप मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से जो प्रति मास स्व उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्म प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है, वो भी आप प्रकाशित करते हैं। इन सभी सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी के तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप ही देखते हैं। विश्व के चहुं दिशाओं में भ्रमण करते हुए आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशियस जैसे अनेक देशों में वैश्विक स्तर के महासम्मेलनों को संबोधित किया तथा टेलीविजन इंटरव्यू देकर विभिन्न देशों की आध्यात्म सेवाओं को गति प्रदान की। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें जैसे ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीना, ज्ञान के अनमोल मोती, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त मूल्यों का सार जैसी अनेका अनेक पुस्तकें लिखी। सतत ज्ञान अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरपूर है तथा आपने अपने जीवन में योग की गहन अनुभूति की है। अपनी क्लासेस अथवा प्रवचनों के द्वारा आप अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप वैश्विक स्तर के महासम्मेलन, सेमिनार्स और कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न अभियानों का कुशल संचालन कर रहे हैं। शाश्वत योगिक खेती योजना और ग्राम दत्तक योजनाएं जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। और आज हम सभी को यज्ञ का इतिहास सुनाएंगे राजू भाई जी।
ओम शांति। आज हम सब जिस ज्ञान सरोवर परिसर में बैठे हैं, मुख्यालय का ये आबू पर्वत, आबू की श्रृंखलाएं जो हमको शांति का, पवित्रता का संदेश दे रही हैं, ये महान भूमि, महान तीर्थ कैसे बनी, इसका छोटा सा इतिहास और साथ साथ 78 ईयर्स का विद्यालय का इतिहास मैं बहुत थोड़े समय में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप सभी जिस प्रभाग से जुड़े हुए हैं, बिजनेस के क्षेत्र से यहां पहुंचे हैं, एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी इस यज्ञ इतिहास में बहुत गौरव का स्थान रखती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पीछे लाखों कदम फॉलो करने के लिए तैयार हो चुके हैं, उस व्यक्तित्व के विषय में मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में उनका परिचय दूंगा। आज से 78 वर्ष पूर्व 1936 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके पहले बहुत अच्छे और नामी ग्रामी जवाहरात का बिजनेस कर रहे दादा लेखराज, जिनका व्यापार कलकत्ता के अंदर था, कृपलानी परिवार, सिंधी परिवार से वो बिलोंग करते थे, सिंध हैदराबाद उनका मूल जन्म स्थान था। उस समय भारत एक ही था, बंटवारा नहीं हुआ था, और दादा लेखराज जी को उनकी कैसी पहले की जीवन थी और इस विद्यालय में कैसे वो मुख्य रूप से समर्पित हुए, उसका बहुत सुंदर इतिहास है। बाबा अपनी लौकिक जीवन के अंदर श्री नारायण के अनन्य भक्त थे और गीता का नित्य पाठ करते हुए बिना गीता पाठ के कभी भी भोजन स्वीकार नहीं करते थे। अपनी लौकिक जीवन के अंदर आपने बहुत से गुरु किए थे, गुरु में बहुत भावना थी, श्रद्धा थी, गुरु के प्रति इतना आदर था जो उनके मुख से निकलता था कि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। अगर गुरु ने याद कर लिया तो कितना भी वो व्यस्त हो पहुंच जाते थे। भक्ति, पूजा, पाठ और विशेष करके धर्म प्रेमी होने के नाते अपने व्यापार में भी धर्माऊ निकालते थे। अगर उस समय सोले आने का 1 रुपया होता था, उसमें 1 आना धर्माऊ के लिए निकाल देते थे। बहुत भावना प्रधान परिवार था और उस समय का उनका जो व्यापार था हीरे जवाहरात का, वो राजाओं महाराजाओं के साथ था। बाबा के बनाए हुए जेवरात अभी तक भी लंदन में रानी के म्यूजियम में हैं। उस समय ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश के साथ भी बाबा का व्यापार चलता था, साथ साथ नेपाल के राजा के साथ, उदयपुर राजा के साथ, क्योंकि राजाई घराने में ज्वेलरी का बहुत शौक था, तो बाबा की बनाई हुई ज्वेलरी हर राजाओं की दरबार में अभी तक भी मौजूद है और बाबा उनकी निवास स्थानों पर खुद जाते थे और उनसे बैठते थे, उनकी दरबार में भी शामिल होते थे, उनकी पार्टीज में भी जाते थे, लेकिन बाबा का खान पान शुरू से ही बहुत सात्विक था, कृपलानी परिवार था। कभी भी आपने मांसाहार, शराब आदि का सेवन अपनी लाइफ में नहीं किया। तो जब बाबा उनकी पार्टी में पहुंचते थे तो राजाएं कहते थे, बाबा आज की पार्टी तो फीकी रह गई, क्योंकि ये सब बाबा उस भंडारे में आने ही नहीं देते थे। बाबा के अपने बहुत पक्के नियम थे, धारणाएं थी, भक्ति, पूजा, पाठ, और अपना एक बहुत सम्मानजनक परिवार था। बहुत सम्मानित रूप से दादा दादा कह करके सिंध परिवार के अंदर आपकी मान्यता रहती थी। 1936 में आपको कुछ अलौकिक अनुभूतियां होने लगी, और उन अलौकिक अनुभूतियों में आपकी दृष्टि में वो शक्ति आती गई जो किसी की तरफ भी ऐसे देख दे तो देखते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। इन्होंने भी समझा नहीं कि क्या चमत्कार है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये कौन करा रहा है, तो अपने गुरुओं से पूछते थे कि गुरुजी आपकी बड़ी कृपा हुई है, ये क्या अनुभव लोगों को हो रहे हैं। तो गुरु लोग कहते थे, ये दादा मेरा कुछ भी नहीं है, ये कोई भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो इसी बात को लेकर के वो अपने व्यापार से ही कुछ समय लेकर बनारस में एकांतवास के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि इसकी खोज करनी चाहिए कि क्या क्या अनुभव मुझे हो रहे हैं, और मेरे द्वारा लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, क्या विशेष बात होने वाली है। तो बनारस में अपने मित्र की कोठी पर बाबा के हाथ में पेंसिल होती थी और दीवालों पर बाबा कुछ न कुछ नक्शे बनाते रहते थे। बाबा को पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है, और उन नक्शों के अंदर जो आज आप यहाँ विद्यालय में ज्ञान सुन रहे हैं, उस ज्ञान के कुछ चित्र होते थे। सृष्टि चक्र का चित्र, कल्प वृक्ष का चित्र, पुनर्जन्म आत्माओं के कैसे होते हैं, वो बाबा डिजाइन करते रहते थे। बाबा को पता नहीं था ये सब क्या है, लेकिन अचानक उनको एक दिव्य साक्षात्कार हुआ, और उस साक्षात्कार के अंदर पहले पहले उन्होंने इस सृष्टि के महाविनाश का बहुत भयानक दृश्य देखा। उनको ये नहीं मालूम था उस समय एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, इसका कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे अग्नि शस्त्र छूटते हुए उन्हें दिखाई देने लगे, आंख बंद थी, और दुनिया का महाविनाश एक ओर बॉम्ब्स के द्वारा देख रहे थे, दूसरी ओर गृह युद्ध के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में खून कर रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, और तीसरी ओर एक बहुत बड़ा तांडव प्रकृति के द्वारा, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, सुनामी आ रही है, पूरा विश्व एकदम तबाह हो रहा है। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें जैसे ताश की पत्ते की तरह ऐसे गिर रही हैं, धराशायी हो रही हैं। तो ये सब दृश्य आंख बंद देख रहे हैं, और देखते देखते इनके अंदर से ही आ रहा है, हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या जो मुझे ये दर्शन हो रहे हैं। तो उस भयानक विनाश का दृश्य देखते इनके मन में बड़ा वैराग्य आ गया कि दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है क्या। तो उसी प्रश्नों को लेकर जब शांत हुए थोड़ा, तो दूसरा दृश्य उनके सामने इमर्ज हुआ, और उस दूसरे दृश्य में उन्होंने देखा कि कुछ सितारे ऊपर से उतर रहे हैं, और वो सितारे जब जमीन पर आते हैं तो देवी और देवताओं की सुंदर ड्रेस में परिवर्तित होते जा रहे हैं, और पूरा ही ये विश्व एक सुंदर बगीचा स्वर्णिम युग बन गया, जहाँ सोने हीरे जवाहरात के महल हैं, देवी देवताएं और उसका सुखमय साम्राज्य दिखाई दिया। ऐसी सुंदर दुनिया उन्होंने अपनी आंखों से देखी और एक आवाज आई कि अब ये दुनिया तुम्हें बनानी है। इनके मन में और प्रश्न उठ गए, ये दुनिया मुझे बनानी है, ये मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा धंधा है। इसी प्रश्न को लेकर के आप फिर से अपने गुरुओं के पास गए और उनसे पूछा, ये क्या सब है, किसकी लीला है, कौन करा रहा है ये सब, मैं ऐसा ऐसा क्या देख रहा हूं। अब गुरुओं को भी पता नहीं था ये सब क्या है, वो कहते थे प्रभु की लीला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक दिन गुरु के सत्संग में अपने ही घर में बैठे थे हैदराबाद के अंदर, तो अचानक उनको वैराग्य आया। सत्संग से कभी बीच में नहीं उठते थे, लेकिन सत्संग चल रहा था और वो सत्संग से उठ करके अपने कमरे में जाने लगे। तो जब कमरे में गए तो उनकी जो बहू थी बाजू में साथ में बैठी थी, उनको संकल्प आने लगे कि आज बाबा को कुछ शायद शरीर में तकलीफ होगी, कुछ होगा, नहीं तो बाबा कभी भी सत्संग छोड़ करके नहीं जाते, कुछ भी हो जाए। तो बाबा आगे आगे कमरे में की तरफ गए और उनकी लौकिक बहू ब्रजेंद्रा दादी, जिनको हम कहते, वो महाराष्ट्र जोन की संचालिका थी, कुछ समय पहले अभी शरीर छोड़ा, लेकिन वो उनके पीछे पीछे गई। तो बाबा एक कमरे में ऐसे ही ध्यानावस्था में बैठ गए अपने कमरे में जा करके, और एकदम इनके लाल नैनों से बिल्कुल जैसे कोई लाइट की ज्वाला भभक रही थी, आंखें लाल लाल हो गईं और पूरा कमरा लाइट से भर गया। उनकी बहू आंखों से देख रही है और बाबा एकदम ध्यान अवस्था में मग्न है। फिर उनके ही द्वारा, उनके ही मुख से आवाज आती है, तीन आवाज आई, निजानंद स्वरूपम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, प्रकाश स्वरूपम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ज्ञान स्वरूपम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। और ये आवाज आकर के एकदम बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल कमरे में लाइट खत्म हो गई और बाबा जब साकार में ध्यान का पार्ट पूरा हुआ तो देखने लगे कौन था, किसने आवाज दी, किसकी आवाज थी, कौन कह रहा था, कौन है, बहुत खोज शुरू हो गई। वो दृश्य उनकी बहू ने प्रैक्टिकल सब देखा और बाबा का वो जीवन उस समय परिवर्तित हुआ, परमात्मा शिव की उनके तन में प्रवेशता हुई। अब उसके बाद जो इतना बड़ा बिजनेस था कलकत्ता के अंदर, पार्टनर को कहा कि अभी मुझे बिजनेस नहीं करना है। सब सोचने लगे इतना बड़ा बिजनेस बाबा के हाथों से चल रहा है, भागीदार को तो अनुभव ही नहीं है जवाहरात का। उसको कहा कि तुमको जो हिस्सा देना है मुझे दे दो और ये तुम संभालो, बाकी अभी मैं ये कौड़ियों का बिजनेस नहीं करूंगा। बाबा उसी समय इस बिजनेस को समेट करके अपने फिर से लौकिक घर गए और उनके मुख का एक आवाज था, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, छोड़ी गदाई और चले रेल के राही, खुद रेल ट्रेन पकड़ी और चल दिए। उसी समय जब अपने घर में गए तो वहां सत्संग शुरू किया, बाबा के ही घर में एक छोटा सत्संग शुरू हुआ। और बाबा ने 1937 में अक्टूबर के अंदर जो बाबा की आवाज प्रेरणाएं आती थी इनके माध्यम से, बाबा उसमें सबसे पहला एक नारा देते थे, वंदे मातरम, मैं इन कन्याओं माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलूंगा। और बाबा का भी भक्ति के अंदर मात्र स्नेह बहुत था और उसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ ये था कि बाबा जब श्री नारायण की अनन्य भक्ति करते थे, पूजा करते थे, तो एक चित्र था बाबा के पास और उस चित्र में श्री नारायण विष्णु से सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। तो भक्ति काल के अंदर ही बाबा को आता था कि ये तो जैसा व्यक्ति है वैसे ही उसने चित्र बना दिए, इन देवताओं को पैर दबवाने की क्या जरूरत है, ये लक्ष्मी कहां तो विश्व महारानी है, कहां तो इसकी इतनी पूजा हम सब करते हैं, इसको दासी के रूप में क्यों दिखाया है। तो उन्होंने अपने चित्रकार को बुलाया और कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से मुक्त कर दो, बाबा इसको देख नहीं सकता। पैर दबाते हुए लक्ष्मी को मुक्त करा दिया, कहा कि नहीं, माताओं से ये सेवाएं देवताएं नहीं ले सकते। तो भक्ति के अंदर भी उनकी श्रद्धा माताओं में बहुत थी और शिव बाबा की जब प्रवेशता हुई तो बाबा ने कहा कि मैं माताओं बहनों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करूंगा। लेकिन उस समय माताएं पाकिस्तान के अंदर तो और भी बुरके वाली थी, घरों से बाहर ही नहीं निकलती थी। और जब बाबा के सत्संग शुरू हुए तो उसमें माताओं का विशेष रोल था, बहुत बड़ा संगठन, क्योंकि उस समय सभी लोग बिजनेसमैन अधिकतर सिंधी फैमिली थी इनकी और सिंधी फैमिली में सबका व्यापार विदेशों से था। तो पति लोग तो घर वाले सब जाते थे विदेश कमाने के लिए और माताएं घरों में खाली होती थी। तो जब बाबा ने गीता ही सुनाना शुरू किया अपने घर में तो गीता ही पाठ करते करते वो गीता छूट जाती थी और बाबा के मुख से वो सच्ची गीता शिव बाबा की निकलने लगती थी। शिव बाबा अपना काम शुरू कर देते थे बोलना और ये गीता जो सामने थी वो छूट जाती थी। तो जब सत्संग शुरू हो गया और बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें सत्संग में आने लगी तो बाबा ने फिर एक छोटी सी कमेटी बनाई और कमेटी में 7 कुमारियां और कुछ माताएं रख करके कमेटी का नाम दिया ओम मंडली, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो उस ओम की ध्वनि से लोगों को बड़े अच्छे अनुभव होते थे, कोई सतयुग का, श्री कृष्ण का, वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस ओम की ध्वनि के साथ ही पूरी सभा बहुत अच्छे अच्छे अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगते थे। तो ओम की ध्वनि में इतनी शक्ति है, इसलिए बाबा ने जो संगठन बनाया और सारी संपत्ति जो बाबा अपने बिजनेस से समेट के लाए थे वो कमेटी बना करके एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई ओम मंडली और कन्याओं माताओं के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी। ये सत्संग में माताएं बहने अधिक आती हैं, उसमें 2 बहनें पहले पहले बहुत होशियार थीं और वो कॉलेज की पढ़ाई से ही 17-18 साल की उम्र में आई। एक को बाबा ने दृष्टि देते ही अनुभव किया कि ये तो श्री राधे वैकुंठ की श्री कृष्ण की साथी है और उनका लौकिक नाम भी श्री राधे था। पढ़ाई के अंदर ज्ञान, बहुत वीणा बजाने की आदत थी, अपने कॉलेज में नंबर 1 सिंगर के रूप में थी, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थी और उनके साथ ही एक पढ़ती थी जिनका नाम था रामा। ये 2 कुमारियां रामा और राधे जब विद्यालय के अंदर आई और बाबा को देखा, उनको बहुत सुंदर अनुभव होने लगे बाबा से। उनको ये नहीं पता था भगवान है ये है, लेकिन जब बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने उसमें श्री कृष्ण देखा और उस श्री कृष्ण को देख करके उन्होंने कहा कि मुझे रोज सत्संग करना है। तो वो सत्संग में आने लगी, उनके साथ और भी 5-7 कुमारियां, उनको बाबा ने एक ट्रस्टी बना दिया और पूरी संपत्ति उनके आगे समर्पित कर दी। फिर बाबा कुछ समय के लिए कश्मीर चले गए कि अभी तुम माताओं कन्याओं का संगठन संभालो, परिवार को लेकर के अपने कश्मीर चले गए और यहाँ पर वो सत्संग माताओं बहनों ने संभाला और सत्संग दिन प्रतिदिन खूब बढ़ता गया। करीब 2-3 हजार का सत्संग हो गया। और जब सत्संग बढ़ने लगा और खूब लोग आने लगे, अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, तो कहते थे वो मंडली में जाने से पैसे पैसे में साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार के कारण ही सत्संग बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे जो सत्य ज्ञान परमात्मा का ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलता था, बाबा कश्मीर में भी गए तो रोज शिव बाबा उनके द्वारा पत्र लिखवाते थे और उनमें पूरा ज्ञान लिख करके भेज देते थे, और वो ज्ञान पढ़ करके सुनाती थी मातेश्वरी जी या दादियां जो थी, अभी हम दादियां कहते हैं, उस समय तो कुमारियां ही थी। दादी सिंधी भाषा में बड़ी बहन को कहते हैं, दादा जैसे बड़े भाई को कहते हैं, तो इनको हम दादियां इसीलिए कहते हो, बड़ी बहन। तो उन बड़ी बहनों को बाबा ने लिखत में भेजना शुरू किया कश्मीर से, 1 महीना 2 महीना वहां रहे और ये सत्संग बढ़ता गया। सत्संग में आने वालों की जीवन में कुछ धारणाएं नेचुरल होती गई। जो गीता में आता है वो गीता का ज्ञान उनके प्रैक्टिकल जीवन में आने लगा। गीता पढ़ने से कभी नहीं आया था, लेकिन वो जब सुनती थी तो उनको आता था कि ये तो भगवान के वर्षांश हैं और जो भगवान कह रहे हैं वो मेरे लिए कह रहे हैं। यदि व्यक्ति ये नहीं महसूस करे ये मेरे लिए कह रहे हैं, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो सत्संग में आने वाली कन्याएं माताएं थी उनको ये लगा कि भगवान मुझे ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ये काम क्रोध नरक के द्वार हैं, अगर इनको जीत लोगे तो तुम जगत के मालिक बन जाओ, इनको जीतना सबसे पहला आवश्यक है। तो माताएं बहनें तो बहुत भावुक भी थीं, उनको आगे क्या होगा ये पता भी नहीं था, और उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ ये प्रतिज्ञा कर ली कि हम इन पर विजय प्राप्त करके रहेंगे, भगवान कह रहा है मुझे। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो आप समझते हो, जब उनके पति बिजनेसमैन बड़े बड़े घरों के लोग अपने घरों में वापस आए और बहनों ने संकल्प लिया कि मुझे तो इन विकारों को टच ही नहीं करना है, तो घर में झगड़े शुरू हो गए। ये क्या, ये कौन सा ज्ञान है, किसने तुमको इस पढ़ाया है? अभी छोटे छोटे यंग एज में बहनें, तो नेचुरल है ये विकारों का सौदा जिन्होंने किया और वो विकार छोड़ देंगे तो घर में तो झगड़ा होगा ही। तो बहुत एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, और उसमें भी इतना ज्यादा विद्रोह हो गया जो कोर्ट तक बात कही पहुंच गई, और उसमें ब्रिटिश राज्य था, कि ये कौन सा सत्संग बना है, कौन कह रहा है ऐसा, जो आज हर घर के अंदर बहनें कहती हैं हम मांस नहीं बनाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम तो सात्विक हैं, हम तो देवता बनने वाले हैं और हम पवित्र और योगी रहेंगे। अब ऐसी पवित्र और योगी जीवन बनाने के लिए बंधन तो आएगा ही, जब बंधन आना शुरू हुआ बहुत विरोध हो गया, तो बाबा को जो इतना सम्मान मिलता था समाज के अंदर, बाबा के फिर कोर्ट केस हो गए, बहुत हंगामा होने लगा। और बाबा कहे कि मैं तो ये कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो कहता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद प्रवृत्ति वाला हूँ। बाबा को लौकिक में 3 बेटियां और 2 बेटे थे, 5 का परिवार अपनी इक्वल बच्चे सब साथ रहते थे, उनके बेटे के बेटे और कई परिवार के सदस्य थे। तो बाबा ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं कहा महाशत्रु है, अब जो ऊपर वाला कह के मेरे द्वारा जाता है वो मान रही बच्चियां, मैं क्या करूं। तो फिर मातेश्वरी जी बहुत शक्तिशाली थी, कन्या थी, कुमारी थी, और पूरा ओम मंडली की बागडोर बाबा ने उनको पहले ही सौंप दी थी, इसलिए सभी कचहरियों के अंदर कोर्ट के अंदर वो खुद गई और बहुत अच्छी तरह से बहस करके भी अपने आप को मुक्त बाबा को छुड़ाया। नहीं बाबा, बाबा हमारा बाप है, लौकिक में भी बाप अगर बच्चे को प्यार देता है, स्नेह देता है, वो कहता है और बच्चे मानते हैं, तो इसमें किसी का विरोध क्यों है। और उन्होंने पहला एक बहुत अच्छा वकालत की, मम्मा मम्मा हम कह रहे हैं मातेश्वरी, जो पहली पहली कुमारी समर्पित हुई, मुख्य प्रशासिका बनी, राधे जिसको बोला, वो बहुत पावरफुल कुमारी थी, और ओम मंडली उन्हीं के नाम से, ओम राधे के नाम से शुरू हुई। तो जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में सबसे पहला नियम था कि गीता पर हाथ रख करके बोलो कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके जो कुछ बोलूंगी वो सच बोलूंगी। और मातेश्वरी जी ने इसी पर बहस करना शुरू कर दिया कि जस साहब, यहां भगवान हाजिर नाजिर मुझे नहीं दिखाई देता, यहां तो आप हाजिर नाजिर हैं, ये सब सभा हाजिर नाजिर है, हाजिर नाजिर नजरों के सामने हाजिर जो है उसकी कसम लेकर के मैं बोल रही हूं कि मैं जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी, बाकी भगवान यहां हाजिर नाजिर कहां है। इसी बात पर कोर्ट में बहुत पहले धमकी दी गई कि इनको बंद कर दो जेल के अंदर, ये कोर्ट के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। वो जरा भी नहीं डरी, कहती अगर आप प्रूफ कर दो कि भगवान यहां हाजिर नाजिर है तो मैं मान लूंगी। इसी बात पर वो कोर्ट पूरी डिसमिस हुई, पूरा ये केस खत्म हुआ कि इनकी बातों में कुछ दम है, भगवान कहां यहां हाजिर नाजिर है, और ये जो कह रहे हैं इनके अंदर प्योरिटी है, सत्यता है, इसलिए अथॉरिटी है, बहुत अथॉरिटी से बोलती थी। फिर वहां के अधिकारियों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सलाह दी कि बाबा आपके विरोध में बहुत लोग खड़े हो गए हैं, इसलिए हम समझते हैं कि आप यहां से संस्था को कराची में ले जाएं। 2 साल तक हैदराबाद में रहे। स्थापना में बहुत रुकावटें आई, पहले बहुत भरपूर हुआ और फिर इतने विघ्न आए जो बाबा ने कहा ठीक है हम परिवार सहित हैदराबाद से कराची चले जाते हैं। और जब कराची में आए और वहां पर सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि शिव बाबा का काम था स्थापना का, वो तो अपना कर ही रहे थे, तो जितने लोगों ने वहां प्रतिज्ञाएं की थी, घरों में संकल्प लिए थे, वो सब भाग भाग करके कराची आ गए, रातों रात ट्रेन पकड़ करके, कोई ने कुछ नहीं सोचा। अब जब कराची हैदराबाद से सब भाग के आए तो और परिवार वाले गर्म हो गए, ये क्या हुआ, ये तो हमारी कन्या माता है, भाग गई सारी सत्संग के अंदर, और उन्होंने उनके नाम से सम्मन निकालने शुरू कर दिए। सम्मन में 18 साल की, जिनकी 18 से ऊपर थी, बाबा ने उनको ही रखने की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने अंडर एज दिखा दी, कोई की 15 साल, कोई की 14 साल, बड़े 20 साल 25 साल वाले थे, लेकिन सम्मान जब निकले तो कोई अंडर एज वाले के नाम दिखते कि 15 साल की है भाग गई, 16 साल की है भाग गई, तो सबको पुलिस आती थी पकड़ पकड़ के ले जाती थी। तो बाबा ने एक नियम बनाया कि इस सत्संग के अंदर जो भी आएगा वो अपने परिवार से लिखित में छुट्टी लेकर के आएगा, बिना छुट्टी के हम नहीं रखेंगे। तो छुट्टी में क्या लिखना है कि हम सत्संग करने जा रहे हैं, हमको ज्ञान अमृत पीने और पिलाने की छुट्टी चाहिए, ज्ञान अमृत पिएंगे, ज्ञान अमृत पिलाएंगे। और बहनों ने अपने परिवार में जा करके माँ बाप को, परिवार को, पतियों को बहुत प्यार से समझा समझा करके वहां से ये लिखत में छुट्टी ली, क्योंकि उनकी ये जिद थी कि मुझे तो सत्संग करना है, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती हूं, देनी पड़ी छुट्टी। और वो लेटर ले ले करके 400 बहनें अधिक थी, कुछ 15-20 भाई, वो सब कराची में पहुंच गए 38 में। वहां पर फिर बाबा ने, जब ये शांति हो गई, सब हंगामे पूरे हो गए, एक सत्संग कायदे से एक कमिट बहुत सुंदर संगठन बन गया 300-400 का, और उसी समय ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हंगामा भी शुरू था, इधर हंगामे चल रहे थे, उधर बाबा का ये यज्ञ चल रहा था। और वहां पर बाबा ने इन बहन भाइयों को, जो भी आए सत्संग के अंदर, उनको बड़े अच्छे अनुभव कराए, तपस्या कराई। 38 से लेकर के 50 तक कुछ बाहर की दुनिया का पता नहीं, 12 साल वो, 2 साल हैदराबाद के, 14 साल अच्छी तपस्या कराई। और जितना भी बाबा को ज्ञान देना था, जो भी ज्ञान हमारे इस विद्यालय में आप सब सुन रहे हैं, उसमें कुछ कन्याएं बहुत भोली थी, सच्ची थी, छोटी छोटी, क्योंकि बाबा ने एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल चालू करवाया कराची में ही, और उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर जिन परिवार के माँ बाप ज्ञान में इसमें आ गए थे, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल। वो बच्चियां जो इस विद्यालय में बोर्डिंग में रहने लगी, उनमें कुछ एक को ट्रांस का बहुत अच्छा पार्ट खुल गया, ट्रांस में जाती थी। जैसे अभी जो जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है, दादी हृदय मोहिनी गुलजार दादी जो आपसे आज शायद मिलेंगी शाम को, उस समय दादी की उम्र केवल 9 साल थी और दादी अपनी माँ के साथ सत्संग में आ गई। माँ और बहनें, दादी की एक लौकिक बहन दिल्ली में है और माताजी चाची माने माताजी की और देवरानी जेठानी जो भी समर्पित हुई आकर के। तो दादी 9 साल की उम्र में आई और दादी को आते ही बहुत बहुत सरल थी, शोभा नाम था लौकिक, और उसने ट्रांस का पार्ट शुरू हुआ और सबसे नंबर 1 ट्रांस माना जो बाबा के पास ऊपर जाके देखती थी वही बाबा की मुरलियां चलती थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो बोलते थे वो ऊपर देख करके पहले बता देते थे कि बाबा ऐसे है ऐसे है ऐसे, लेकिन बाबा खुद उनसे नहीं पूछते। वो छोटी थी बाबा के आगे, तो बाबा की उम्र तो 60 साल के ऊपर थी, वो तो 9 साल की थी। तो अपनी परिवार के साथ बाबा उनको बिठाते थे, लौकिक परिवार के साथ, कि तुम इनसे पूछो तुमने क्या देखा। तो जो हमारा ज्ञान है 3 लोकों का, सृष्टि चक्र के अंदर ही साकाल लोक है, इसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी है, उसके ऊपर आत्माओं की दुनिया है जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम, वो आत्माएं वहां रहती हैं, वहां से आत्माएं सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले करने आती हैं। वो बाबा ने इन दादियों को जो पहले छोटी उम्र में आई ट्रांस के द्वारा सब अनुभव कराए, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे विनाश होगा, वहां कैसे राज्य चलेगा, क्या धर्म होगा, क्या भाषा होगी, क्या कल्चर होगी, कैसा भारत होगा, वो पूरा ही दृश्य ट्रांस मैसेज में वो देखती थी। और जो कुछ देखती थी, एक संदेश ही नहीं थी, 15-20 संदेशियां एक साथ ऊपर चले जाते थे ट्रांस में, और सब देख करके आकर के नीचे एक साकार लोक में वो दृश्य प्रैक्टिकल सबके सामने करके दिखाती थी कि हमने ये देखा ये देखा ये देखा। उधर यहां हंगामे चल रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के झगड़े हो रहे हैं, और उधर बाबा के उस कुटिया में उस घर में इस प्रकार का खेल चल रहा है स्थापना का। खूब तपस्या की, दुनिया का कुछ पता नहीं, लड़ाई झगड़े का समाचार उनके पास कुछ नहीं। 47 में पार्टीशन में बाबा के और इन बहनों के जो लौकिक संबंधी हैदराबाद कराची उधर थे वो सब भाग भाग करके कुछ नहीं लेके आए, सब चाबियां बाबा को दे के आए कि आप संभालो, और सब भाग करके यहाँ भारत में आ गए। कोई कलकत्ता चला गया, कोई बॉम्बे चला गया, कोई मद्रास चला गया, लेकिन अनेक जगहों पर सिंधी फैमिली उस समय आई और उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस करके अपने आप को आज कहाँ पहुंचा लिया। लेकिन पाकिस्तान से वो लोग कुछ नहीं लाए। जब वो 47 में यहां आ गए तो बार बार आग्रह करने लगे कि बाबा पाकिस्तान में आप क्या सेवा करेंगे, वहां तो बहुत कट्टर लोग हैं, क्या सुनेंगे आपकी, आप भारत आ जाओ। और वहां वाले कहें कि आप तो खुदा प्रस्त हो, आप तो खुदा के बंदे हो, आपको यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई तकलीफ हम लोग नहीं देंगे। लेकिन शिव बाबा बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा शिव बाबा उनको कुछ प्रेरणाएं भारत आने की देते रहते थे और ये दृश्य दिखाते थे कि बच्चे तुम पहाड़ों पर जाके तपस्या करोगे और अंतिम विनाश का दृश्य भी वहीं से देखोगे। तो ये जब प्रेरणाएं भी इधर से आ रही है, शिव बाबा भी कह रहा है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा नाम अलौकिक पड़ा, लौकिक नाम तो दादा लेखराज था, लेकिन ट्रांस मैसेज में एक बार एक संदेशी गई और जितने भाई बहने थे संगठन में उन सब के नाम चेंज करिए। जैसे नया जन्म होता है तो नए जन्म का नया नाम मिला। गुलजार दादी जिनको हम बोल रहे थे शोभा नाम था, उनको नाम दिया हृदय मोहिनी। जिनको रामा नाम था दादी का, दादी प्रकाशमणि का, उनको बाबा ने प्रकाशमणि नाम दिया। ये नाम सब अव्यक्त वतन से संदेशी ट्रांस में जा करके एक एक को सामने बुलाती थी और ऊपर का नाम उनको देती थी, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा नाम है। और बाबा को नाम मिला ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि इसके द्वारा नई सृष्टि की भगवान को रचना करनी है। इसलिए रचयिता साकार रूप में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का पिता है, इसलिए इनके द्वारा ज रचना हो रही है, इसलिए इनको अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा मिला। और इनके जो बच्चे, इनके द्वारा जो एडाप्ट हुए बच्चे हैं, वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। ये संस्था इस नाम से ओम मंडली परिवर्तित हो गई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में। परमात्मा ने अलौकिक नाम देना शुरू किए और ये पूरी संस्था उसी समय कराची के अंदर ही ब्रह्मा कुमारी के नाम से ट्रांसफर हो गई। यहां पर आए 1950 में बाबा ने दो बहन और एक भाई को भेजा कि जाओ आबू भारत जाओ, और कौन सा ऐसा स्थान है जहां 400 लोग रह सकते हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है। तो बाबा के जो लास्ट गुरु थे उनका नाम था गंगेश्वरानंद, और उन गंगेश्वरानंद का यहां पर एक आश्रम है आबू में। तो उन्होंने भी बाबा को आग्रह किया कि आबू एक तपस्या स्थली है, बहुत ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण है, और आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं राजाओं की, आपको यहाँ पर हम व्यवस्था कराएंगे। तो बाबा ने दो बहनों को एक भाई को भेजा कि जाओ तुम देखो क्या है व्यवस्था वहां पर। तो जब वो बहने आई और आबू देखा तो उनको भी पसंद आ गया, और यहां पर एक भरतपुर राजा की कोठी थी जिसको जब देखा तो उनको लगा कि यहां पर हम 400 लोग रह सकते हैं। उसके बाद फिर 1950 में बाबा के पास जो इस आश्रम के अंदर यज्ञ के अंदर पूरी सामग्री थी, उन्होंने कहा आप सब ले जा सकते हो। एक बहुत बड़ा स्टीमर किया कराची से गुजरात में ओखा बंदरगाह पर पहुंचे, पूरा स्टीमर भर के सामान और सब लोग एक साथ, और गुजरात में ओखा बंदरगाह पर स्टीमर उतरा, और वहां से फुल ट्रेन करके आबू आए मई 1950 में। और यहां पर जो कोठी थी भरतपुर राजा की, उसको नाम दिया ब्रज कोठी। और उस ब्रज कोठी में जब आए तो कुछ परीक्षाएं इनके आगे बहुत कड़ी शुरू हुई। पहले तो आराम से बाबा की प्रॉपर्टी थी, और भी कुछ दो चार परिवार समर्पित हुए थे, बहुत जो भी ले आए थे धन संपत्ति, 14 साल तक इन्होंने कुछ नहीं बाहर किया, सब आराम से खाया पिया मौज से रहे, और यही संकल्प था कि हम जिएंगे मरेंगे तेरे साथ। तो 1950 में जब आबू आए तो आबू में सबसे बड़ा पेपर यहाँ इनके आगे परीक्षा आई कि यहाँ उस समय बहुत ठंडी थी और सिंध में कराची में समुद्र के किनारे गर्म थे, इनके पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और ये ठंडी के इलाके में आते ही, क्योंकि मई के बाद जून में यहाँ बरसातें, अभी तो बरसात नहीं पड़ती, उस समय इतनी टू मच बरसातें होती थी, फाग बादल आ जाते थे और उसके कारण बहुत ठंडी हो जाती, तो आते ही लोग यहाँ पर बीमार पड़ गए, कई लोग बहुत बीमार पड़ गए। और साथ साथ बीमारी के साथ साथ वो जो लाए थे खाना पीना बचा हुआ, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब परीक्षा शुरू हुई तो परीक्षा के अंदर बाबा की तो बहुत बेगमपुर की स्थिति थी, निश्चिंत स्थिति थी, कोई संकल्प नहीं था, ये तो बाबा के बच्चे हैं, उनमें भगवान के प्रति इतना निश्चय था, ये मेरे को थोड़ी इन्होंने जीवन समर्पित किया है, इन्होंने तो उसको समर्पित किया है ना, वो संभालेगा अपने आप। तो बाबा तो बेफिक्र बादशाह था, लेकिन जो बच्चे थे यंग एज में थे, सब जवान थे, तो उनको संकल्प आता था कि बाबा आप छुट्टी मुझे दो तो मैं जाके कुछ कमा के ले आऊं, मैं भी तो कमा सकता हूं कुछ। बाबा ने कहा इसके लिए तुम थोड़ी समर्पित हुए हो, तुमको मैंने इतने रत्न दिए हैं, ज्ञान धन दिया है, गुणों का धन दिया है, चरित्र का धन दिया है, इतने तुम धनवान हो, लिख दो अखबारों के अंदर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज। खाने के लिए पैसा नहीं, एक रुपया नहीं, और बाबा की वाणी चल रही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन सबसे बड़ा धन है, बच्चे इस धन का दान करो। अब बहनों को तो पता ही नहीं था कैसे दान करें, कहां दान करें, तो बाबा ने इनको पहले पहले कुंभ मेले में भेज दिया, इलाहाबाद में 52 में निकले, डेढ़ दो साल यहां पर खूब पेपर आए। तो कुछ भाई बहन जो थोड़े कच्चे थे, जिनको इतना निश्चय नहीं था कि भगवान स्वयं इसकी स्थापना की है, ये ब्रह्मा बाबा का, ये दादा का कोई अपना रोल इसके अंदर नहीं है, ये तो स्वयं शिव परमात्मा को नई दुनिया बनानी है और उसके लिए ये सब हम सबको फाउंडेशन डाल रहा है। तो जो कुछ कच्चे पक्के थे वो तो चले गए दुनिया के अंदर, लेकिन जो बहुत पक्के एकदम निश्चय बुद्धि थे कि भगवान का ये कार्य है, नई दुनिया बनानी ही है, स्वर्ग को आना ही है, उन्होंने फिर बाबा के आदेश अनुसार सेवाएं शुरू की। ज्ञान देना, चित्र तो बाबा ने बनवा दिए थे कराची में, तो ये चित्र ले ले करके गंगा जमुना के कंठे पर, बनारस के अंदर, इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेलों में चित्र लेके बहने गई, और जब बैठती थी और किसी को सुनाना शुरू करती थी तो वही ट्रांस में चले जाते थे लोग। उनसे देवियों का साक्षात्कार होता था, क्योंकि ये बिल्कुल इनोसेंट थे, दुनिया क्या है, यहां तक इनको ने ट्रेन भी नहीं देखी। उसी समय जब आए तो पता, पैसा क्या है, करेंसी क्या है, लोग कैसे हैं, उनका क्या व्यवहार होगा, दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ, क्योंकि 8-9 साल की उम्र में आई, यज्ञ में रह गई, 14 साल तपस्या की, और उसके बाद यहां 2 साल परीक्षाएं, और उसके बाद जब गए तो इनकी दृष्टि में शक्ति थी, वाणी में शक्ति थी, और जो कुछ कहती थी लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। तो कहते थे आप यहां क्यों बैठी बहन जी, आप चलो हम आपको मकान लेके देते हैं, आप वहां से सेवा करो। तो 52 में सबसे पहले एक निमंत्रण मिला दिल्ली का, कानपुर का, लखनऊ का, और वहां के जो मुख्य लोग जब मेले में कुंभ में जाते थे, इनसे मिलते थे, इनको देखते थे, अच्छे अनुभव करते थे, तो उन्होंने फिर इनको मकान दिए, सेंटर बना के दिए। स्थापना कैसे शुरू हुई वो इतिहास, सेंटर खुलने लगे, एक खुला, दो खुला, तीन खुले, लेकिन जब विस्तार होने लगा तो फिर वही परीक्षाएं शुरू हो गई। यहां भी हंगामे शुरू हो गए कि इनके पास जो जाता है जादू लगा देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बहने संदली पर बैठ के दृष्टि देती हैं और उनको जादू लग जाता है, सामने वाले को ये सतयुग में चली जाती, वैकुंठ देखने लगती और ये पवित्रता का व्रत ले लेती। इतना बड़ा हंगामा, ये तो पता नहीं कहां से बाबा जादू सीख के आया होगा, कलकत्ता गया था, कलकत्ता में रहता था तो बंगाल का जादू शायद सीख के आया, और जिसको देखता वो देखता, इनके बच्चे देखते हैं वो साक्षात्कार। तो बहुत हंगामे फिर इंडिया में शुरू हो गए, घर घर में झगड़े शुरू होने लगे, बदनाम होने लगे, और कुछ हमारे और भी प्रेमी होते हैं ना, धर्म प्रेमी, उन्होंने कहा है तो हमारे सनातन धर्म के ही विरोध है, सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है, और इतना विरोध, बड़े बड़े सन्यासियों ने भी विरोध किया। कुंभ मेले में अगर हमारा पंडाल कहीं लगा हुआ है तो सामने माइक लगा करके गालियां देना शुरू कर दिया, और बाबा के पास समाचार आता था, बाबा तो माउंट आबू में थे, बहने लिखती बाबा इतना विरोध हो रहा है अब क्या करें, तो बाबा कहता था बच्चे उनको आप भी जवाब दो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, बच्चे ये आज गालियां दे रहे हैं ये कल फूल चढ़ाएंगे, कुछ जवाब नहीं दो, चुप रहो, शांत रहो। एक बार एक अखबार में कलकत्ता के अंदर बाबा के लिए बहुत उल्टी बातें, बहुत गालियां लिखते, बाबा की बेटी जो थी निर्मल शांता दादी जिनको हम कहते हैं, वो कलकत्ता बंगाल बिहार क्षेत्र की ईस्टर्न जोन की इंचार्ज बनाई गई थी, वो कलकत्ता में रहती थी, और कलकत्ता में ही अखबार के अंदर बाबा के प्रति बहुत उल्टी बातें लिखी गई। अखबार वाले ने पता नहीं कहां से कोई ने लिखवा दिया और उसने लिख दिया कि बाबा तो साइकिल का बिजनेस करते थे, बाबा तो ऐसे थे, बाबा तो ऐसे थे, मतलब बाबा के प्रति खूब उल्टी सीधी बातें लिख दी अखबारों में। तो जब अखबार में आया तो बहन जो बाबा की बेटी थी निर्मल शांता दादी, उनको बड़ा आ गया, मैं तो इसके ऊपर मानहानि का केस करूंगी, ऐसे मेरे पिता के ऊपर क्यों आरोप लगाए, कौन सी प्रूफ है उसके पास, लेकिन बाबा के बिना परमिशन के वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे देखो अखबार में अखबार वाले ने उल्टा लिखा है, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो जब बाबा के पास पत्र आया, बाबा ने देखा और उसमें लिखा था अखबार का नाम है विश्वामित्र, और विश्वामित्र के संपादक नहीं वो सब लिखे थे। तो बाबा ने कहा बच्ची उसके पास जाओ, उसको एक पोली का बाक्स लेके जाओ और उसको प्रसाद का बाक्स लो और एक पत्र लिख करके दो बाबा की तरफ से, बच्चे तुम निर्दोष हो और जो मेरी निंदा करता हो मेरा परम मित्र है और आप तो विश्वामित्र हो, इसलिए आप बहुत बड़े विश्व के मित्र हो, कोई बात नहीं, आपने जो लिखा है बहुत अच्छा है। अखबार वाले के पास से बहने गई और बोला बाबा का ये पत्र है, संदेश आपके लिए। वो बेचारा एकदम चेंज हो गया कि अरे मैंने जिसकी इतनी गलानी की, जिसको ऐसे ऐसे लिखा, वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है, जो कहता तुम मेरे मित्र हो, तुम विश्व के मित्र हो। वो बदल गया, फिर अखबार में अच्छा अच्छा लिखने लगा। तो बाबा ने बड़ी युक्ति से, बहुत प्यार से ऐसे बच्चों को चलाया, कभी भी कोई से हंगामा करने की, कोई से बदला लेने की, कोई से टकराव करने की जरूरत नहीं है। बच्चे सत्य ज्ञान है, सत्यता की हमेशा जीत होती है, जहां अथॉरिटी है वहां नम्रता भी जरूरी है। सत्यता की अथॉरिटी, लेकिन सत्यता को सिद्ध करने के लिए सभ्यता की जरूरत होती है। अगर आप सच्चे हैं और सच्चाई के वो सिद्ध करने के लिए गुस्सा करना शुरू करें, मैं सच्चा हूं ना, मैं सहन नहीं कर सकता, तो सच्चाई किस काम की? कोई सच्चा है तो नम्रता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। बाबा ने वो प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया, कभी भी जोश नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं, एकदम नम्रता का अवतार। और कभी नहीं कहा कि मैं करता हूं, मैं को एकदम समाप्त कर दिया। बच्चे वो कराने वाला है, वो बोलता है वो। एक बार क्या हुआ, बाबा ने कुछ उस समय युद्ध चल रहा था चीन का, जब हुआ था ना चीन के साथ, कुछ जमीन के टुकड़े पर हुआ था। तो बाबा ने अपनी वाणी में, शिव बाबा ने बोल दिया कि बच्चे छोटे से टुकड़े के ऊपर देखो, कौरव पांडवों ने भी एक सुई की नोक पर इतना बड़ा युद्ध कर दिया था, क्या जरूरत है युद्ध करने की, छोड़ देना चाहिए, कुछ ऐसे बोल दिया। और युद्ध के माहौल में तो इमरजेंसी होती है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और उन्होंने हर बात सेंसर होती है, तो जो बाबा ने बोला वो छपता है, उसको ही मुरली कहते हैं। तो वो मुरली जब उस सरकारी अधिकारियों के पास पहुंच गई होगी, क्योंकि सेंसर था सब कुछ, तो उन्होंने पढ़ा और बोला कौन बोला है ऐसा कि दे देना चाहिए, युद्ध बंद कर देना चाहिए, को पकड़ के ले आओ। आ गई सारी पुलिस माउंट आबू में, यहाँ पुलिस आई, बहन ने तो डर गई, पता नहीं अब बाबा को ले जाएंगे कोर्ट में क्या होगा कैसे होगा। तो पहले तो बाबा से मिलने के लिए रोकते रहे कि नहीं जाना, वो बाबा नहीं है, बाबा ऐसा है बोलते रहे। बाबा को पता चला कोई आए हैं पुलिस वाले इंक्वायरी करने, बाबा ने कहा बच्चे आए हैं ना, बच्चों को भेजो मेरे पास। बाबा अपने कमरे में बैठ गए योग में, तपस्या में। वो लोग आए पुलिस वाले, चुपचाप सामने बैठ गए। बोला बाबा आपने ऐसे बोला? बोला बच्चे क्या बोला? बाबा आपने ऐसा बोला कि ये थोड़ी सी जमीन के पीछे झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। बाबा बाबा ने कहा बच्चे इस तन में ना उसी बाबा आता है, मैं नहीं बोलता, मैं कैसे बोलूंगा देश के लिए, लेकिन वो शिव बाबा जो है ना वो जाने जाना नहार है, उसने जरूर बोला होगा। बाबा ये तो बहुत गलत बोला है, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चे, नहीं ठीक है तो उस बाबा को, अच्छा बाबा आपने बोला, उसने बोला ना, उसको आप बोल देना कि अभी ऐसा नहीं बोले, अभी ऐसा नहीं बोले कि ये ठीक नहीं है। बोला ठीक है, मैं आपका संदेश उस तक पहुंचा दूंगा। बाबा छूट गया। तो बाबा ने कभी भी अपने पर नहीं लिया कि मैंने किया, मैं बोलता हूं। बाबा की वाणी में कहीं भी मैं शब्द नहीं आएगा। बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, वही करण करावन हार है। ये तो मीडियम है, ये तो पुरानी जुत्ती है, ये उसने आधार लिया है। तो बाबा की जितनी वाणियां चलती हैं उनमें कभी भी मैं पर नहीं होता, एकदम बाबा निरहंकारी, बहुत निर्माण चित, बहुत नम्रता का अवतार बन करके रहे। ऐसे धीरे धीरे 52 में ही जब कुंभ मेले में प्रदर्शनी कर रही थी, बहने चित्र लगाए हुए थे, तो एक आश्रम वालों ने देखा कि बहुत ऊंचा ज्ञान बहने दे रही हैं, और उस समय सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंस जापान में होने वाली थी। तो उन सन्यासियों को लगा कि इनको बहनों को भी वहां पर हम ले चलें, ये बहुत अच्छा ज्ञान इनके पास है। तो उन्होंने हमारे विद्यालय को लिखित में निमंत्रण दिया जापान का। बाबा को तो सेवाएं विश्व कल्याणकारी है, बाबा ने कहा बच्ची तैयार हो जाओ जाओ। तो दो बहनों को एक भाई को 52 में ही तैयार करके बाबा ने जापान भेज दिया, एक साल के लिए वहां गई। जापान, हांगकांग, चाइना, उस साइड की खूब सेवा की एक साल में रह करके, और वहां से बहुत सारे चित्र बनवा करके ले, अच्छे अच्छे, ये जो हमारे म्यूजियम में चित्र है, झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, वो सब चित्रों की बहुत सारी चित्र बनवा करके वहां से ले। एक डेढ़ साल के बाद फिर भारत में इन सेवाओं का विस्तार हुआ। विस्तार में आपको बताया बीच बीच में विघ्न आते थे, लेकिन विघ्नों को बाबा बड़ी सरलता के साथ, विघ्नों में घबराए नहीं, डरे नहीं, बहुत निर्भयता, बहुत सत्यता, कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चे, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए बाबा को जो अथॉरिटी थी ना, शिव बाबा की, शिव बाबा साथ है, उसका यज्ञ है, उसको सतयुग की रचना करनी है, कैसे करनी वो जानता है, हम लोगों को क्या पता। तो उसने अपनी सेवाएं शुरू कराई और धीरे धीरे भारत के अंदर बाबा कहते थे बच्चे 108 केंद्र खुलेंगे, साकार में जो बाबा थे। तो बहने कहती थी 108 बाबा, दो सेंटर चलाने में मेहनत, एक एक जगह पर झगड़ा, एक एक जगह पर हंगामा कर रहे हैं, लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है, और आप कहते 108 केंद्र खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। और बाबा कहता था बच्ची धैर्य धरो, बहुत शांति से, बहुत प्यार से अपनी बात सुनाओ, लोग जो आपके देवता घराने के है ना, उनके बुद्धि में बात बैठेगी, सबकी बुद्धि में नहीं बैठेगी, सब लोग इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, तुम सुनाते चलो सुनाते चलो, और 33 करोड़ देवता है तो निकल आएंगे। बाबा को बहुत पक्का विश्वास था कि देवता बनने की पढ़ाई है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें साधारण लोग नहीं आएंगे, ऐसे लोग सब सत्संग थोड़ी हो रहा है जो सब आ जाएंगे ढेर, तो यहां वही आएंगे जिनको मनुष्य से देवता बनना है। तो बाबा उस निश्चय के आधार से बोलते थे, और धीरे धीरे सत्संग शुरू होते गए, क्लासेस बढ़ती गई, खुलती गई पाठशालाएं, और बाबा ने जो भावा के उच्चारण किए थे, उच्चारण तो बाबा के साकार से अव्यक्त होने के बाद प्रैक्टिकल दिखाई दिए। बाबा ने 18 जनवरी 1969 में अपना ये भौतिक देह अचानक त्यागा, कुछ तकलीफ नहीं थी, रोज बाबा की मुरली चलती थी, बच्चों से मिलते थे। पांडव भवन अभी आप शायद नहीं गए हैं, जाएंगे, वहां ही उनका कक्ष है, विश्राम घर, विश्राम का कमरा है, उनके बैठने की कुटिया है, उनकी समाधि है, उनका क्लासरूम है, आप सब देखेंगे। तो 69 को शाम के समय बाबा ने 8:30 बजे पूरे जो वहां रहते थे पांडव भवन में, उस समय कहा कि सब बच्चों को बुलाओ, बाबा अभी उनको मुरली सुनाएंगे, शिव बाबा मुरली सुनाएंगे, सब बच्चों को इकट्ठा करो। वैसे 9 बजे क्लास होता था, उस दिन बाबा ने आधा घंटा पहले ही सभी बच्चों को बुला लिया, और क्लासरूम में जब सब इकट्ठे हो गए तो बाबा गए, और आधा घंटा बहुत लहर में, जैसे बाबा मुरली चलाते थे ऐसे मुरली चलाई, और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बाबा को बच्चों के लिए प्रेरणा देनी थी, और लास्ट में याद, प्यार और नमस्ते देकर बाबा ने 3 शब्द पक्के कराए, और वो शब्द थे बाबा के, बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी हो करके रहना, और बच्चों से विदाई। ये शब्द बाबा बोल करके, और दादी प्रकाशमणि जिनको हम कहते हैं, वो उस समय पहले बॉम्बे में गाम देवी की सेवा केंद्र चलाती थी, लेकिन 15 का ग्रुप लेकर के यहां आई थी। उस ग्रुप को बाबा ने कहा बच्ची भेज सकते हो, 2 दिन पहले बोला ग्रुप को भेज दो, तुम यहां रह जाओ। दादी को पता नहीं था बाबा मुझे यहां क्यों रोकता, कभी रोकता नहीं था, पार्टी भेज दिया और दादी को यहां रोक लिया, और दो दिन में दादी को, दादी प्रकाश मणि जिनको हम कह रहे हैं, दादी को पूरे यज्ञ के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ भंडारा है, कहाँ भोजन है, कौन क्या करता है और बाबा की क्या एक्टिविटी दिनचर्या सुबह से रात तक रहती है, बाबा ने दादी को हाथ पकड़ के सारा घर घुमाया, सब कुछ समझाया दो दिन में, जैसे कोई ट्रांसफर करता ना कोई चीज। दादी को लगे कि आज बाबा मुझे ये सब क्यों दिखा रहा है, एक एक मिस्त्री से मिला रहा है, एक मजदूर से मिला रहा है, सबको कह रहा बच्चे इनको प्रसाद खिलाओ, इनको ये देखो ये देखो, ये भंडारा है, ये स्थान है, यहाँ कपड़े हैं, यहाँ ये, टोटल घर दादी को हाथ पकड़ करके सब दिखा करके पूरी व्यवस्थाएं दे करके, और शाम को मुरली सुनाने के बाद दादी को साथ लिया, हाल से निकले बाबा, दादी साथ साथ आई कमरे में और बाबा चारपाई पर बैठे, तो दादी को लगा बाबा को आज कुछ लगता है कंफर्ट नहीं है, तकलीफ है, बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, और बाबा ने ऐसे दृष्टि देना शुरू किया और दादी को ऐसे हाथ में हाथ दिया, और वो हाथ में हाथ दे करके ऐसे आंख बंद करके चले गए, हाथ ढीला हो गया, दादी को लगे बाबा को शायद कुछ हुआ है, तो दादी ने बाबा को ऐसे लिटा दिया बिस्तर पर ही, और डॉक्टर घर में नहीं थे, डॉक्टर जो पर्सनल था बाजार में था, एक भाई को बुलाया जाओ उसको बुला के ले आओ, जब तक डॉक्टर आया एक घंटे आधा घंटे के बाद, तो देख के कहता है बाबा तो चले गए ही नहीं, तो शरीर छूट गया, ऐसा कैसे हो सकता है दादी का, ऐसा कैसे, तो बाबा तो अभी मुरली सुना के आया, बाबा ने तो रात को मेरे साथ भोजन किया, बाबा तो इतनी अच्छी बात कर रहा था, ऐसे शरीर कैसे छोड़ेगा, बाबा शायद कुछ हुआ होगा। डॉक्टर कहे नहीं सब ठंडा हो गया, अभी कुछ नहीं है, आप जिसको बुलाना है बुलाओ। दादी में वो शक्ति तो बाबा ने हाथ में हाथ मिला के भरी थी, फिर पूरी रात जहां जहां बच्चे गए थे सेवा पर सबको फोन किए, उस समय तक जितने केंद्र खुले थे सबको पूरी नाइट फोन करके बोला कि बाबा है यहाँ लेकिन शरीर छूटा है, आप आ जाओ। तो 18 तारीख को शरीर छोड़ा, 19 और 20 दो दिन रखा, और 21 तारीख को शाम के दोपहर के बाद अंतिम संस्कार हुआ। गवर्नमेंट से छुट्टी ली गई, स्थान से सबसे छुट्टी लेकर के पांडव भवन में ही बाबा की समाधि हुई, वहां ही संस्कार हुआ। और जब संस्कार के बाद बाबा के पास संदेशी गई, जो ट्रांस मैसेज में बहने गुलजार दादी खास जाती थी, दादी को बोला कि बाबा को भोग लगाओ और बाबा से पूछो ये सब क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ समय तक कुछ पता नहीं था। तो जब भोग लगाने के लिए दादी गई ऊपर, तो बाबा की प्रवेशता हो गई, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं आई, और दादी की आवाज में पता चल गया कि गुलजार दादी नहीं है यहाँ, अभी वो आत्माओं का पाठ शुरू हुआ। तो बाप दादा जिनको हम कहते हैं, वो पहला पाठ 21 जनवरी 69 को पांडव भवन में शुरू हुआ, और बाबा जब प्रवेश हुए तो उनके आने से सारा वातावरण चेंज हो गया, जो लहर थी ना दुख की वो खत्म हो गई। फिर बाबा ने सब रहस्य खोले कि बाबा अभी कमरा चेंज किया है, ड्रेस चेंज की है, कहीं गए नहीं है, जब तक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक बाबा बच्चों से मिलने के लिए आते रहेंगे, ये गुरु की गद्दी नहीं है, लेकिन साकार रूप में सबको चलाने के लिए, संभालने के लिए दो बहनों को बाबा निमित्त बनाते हैं। तो दादी प्रकाश मणि को बाबा ने मुख्य प्रशासिका का टाइटल दिया, और उनके साथ दीदी मनमोहिनी थी जो बाबा के साथ ही रहती थी। 65 में मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा था, जिनको मातेश्वरी मम्मा कह रहे थे, वो 65 में शरीर छोड़ा। तो मातेश्वरी जी के शरीर छोड़ने के बाद दीदी को बाबा ने अपने साथ रखा था, तो दीदी और दादी की जोड़ी बनी। 21 जनवरी को बाबा ने कलश रख करके इनको निमित्त बनाया और कहा जैसे बाबा बच्चों से मिलते थे, हर बच्चे को पत्र का जवाब देते थे, जहां जरूरत पड़ती थी जाते थे, बच्चों को भेजते थे, ऐसे ये दोनों बहनें अभी इस विद्यालय की बागडोर संभालेंगी, और जब जरूरत पड़ेगी बाबा को बुलाएंगे तो बाबा हाजिर हो जाएंगे, आएंगे। कहाँ आएंगे? गुलजार दादी के तन में आएंगे। वो तन फिक्स कर दिया। तो 69 से लेकर के आज 45 साल पूरे हो गए हैं। बाबा का वही पार्ट अव्यक्त रूप में बच्चों से मिलने का चलता है। बाबा दादी के तन में आते हैं, मुरली चलती है, बच्चे मिलते हैं, जो डायरेक्शन लेने होते हैं डायरेक्ट ट्रांस के द्वारा भी मिल जाते हैं और बाबा डायरेक्ट आकर के भी देते हैं। लेकिन दीदी और दादी को बाबा ने निमित्त बनाया। उस समय इन्होंने फिर बाबा के जितने महावाक्य साकार में चले थे, पहला महावाक्य था, बच्चे तुम विदेश में हर धर्म आत्मा के पास, हर धर्म वाले के पास जाओगी, तुम्हारा ये ज्ञान हर धर्म वाले सुनेंगे, स्वीकार करेंगे। तो दादियों ने पहला प्लान बनाया कि पहले विदेश सेवा शुरू की जाए। 71 में 7 भाई बहनों को दादी ने यहां से विदेश भेजा। लंदन में एक निमंत्रण था और लंदन में पहला ग्रुप गया और वहां ही सेवाओं का बीज पड़ा 71 में। और उसके बाद लंदन के बाद फिर दादी जानकी जो पूना संभालती थी, अभी जो मुख्य प्रशासिका हैं, उनको बाबा ने और दादियों ने 74 में विदेश सेवा पर भेजा। दादी ने विदेश के हर कोने में, वहां से ऑस्ट्रेलिया खुला, अमेरिका में खुला, अफ्रीका में खुला, पांचों खंडों में सब केंद्र खुलने लगे। धीरे धीरे सेवाओं का विस्तार हुआ और लंदन उसका हेडक्वार्टर रखा। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यही है, लेकिन विदेश की सेवाओं को हैंडल करने के लिए दादी जानकी वहां रह करके लंदन को और लंदन के सभी क्षेत्रों को गाइड करती थी। सब स्थानों पर अभी 135 देशों में जो केंद्र चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं का बीज लंदन से ही शुरू हुआ। हर स्थान का पूरा कंट्रोल लंदन कर रहा है और लंदन को अगर राय लेनी होती है तो हेडक्वार्टर मधुबन है, माउंट आबू है। तो 71 के बाद सेवाओं को विस्तृत रूप दिया दादियों ने, और उस समय पांडव भवन बहुत छोटा सा था, संख्या वृद्धि होती गई, सेंटर बढ़ने लगे, फिर नए नए भवन बनने लगे। पांडव भवन के बाद ओम शांति भवन बना, जो अभी देखेंगे आप जाकर के, 3000 सीट का हाल है। वहां सुखधाम बना, विज्ञान भवन बना, पहले आजू बाजू के जो जमीनें थी वहां पर मकान बने। उसके बाद ये मकान 96 में लिया गया, ये जमीन, यहाँ साल गांव है, उनकी गौचर जमीन थी, उन्होंने बहुत अच्छे दाम में, सस्ते दाम में आश्रम को दी। और यहाँ पर ये 37 एकड़ है, 33 या 37 टोटल जमीन के ऊपर बहुत सुंदर ढंग से कंस्ट्रक्शन हुआ, एकेडमी बनी। फिर उसके बाद ग्लोबल हॉस्पिटल बना और धीरे धीरे और विस्तार होता गया। तो शांतिवन बेहद का स्थान है, 20,000 सीट का डायमंड हॉल है, 15,000-16,000 की एकोमोडेशन व्यवस्था है। वृद्धि होती गई, धीरे धीरे विस्तार होता गया और पूरे भारत की सेवाओं का संचालन करने के लिए 19 प्रभाग बनाए गए। क्योंकि कैसे सब तक पहुंचा जाए, कोई भी वर्ग छूटे नहीं, हर वर्ग को ये आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। तो 19 प्रभाग बनाए गए और उन प्रभाग के कोऑर्डिनेटर्स बने, अध्यक्ष बने, चेयरमैन, उप चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऐसे बना करके 19 प्रभाग में पूरे भारत के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास 83 में शुरू किया गया। और सेवाओं को विस्तृत रूप देने के लिए सबसे पहला एक प्रभाग बना यूथ, यंग। हमारे विद्यालय में बहुत सारे यंग, 60% यंग, तो उन सब की सेवाओं का कैसे प्रयोग किया जाए। तो 85 में सबसे पहले पूरे भारत की सेवाओं के लिए अभियान पद यात्रा निकाली गई और उस पद यात्रा के अंदर गांव-गांव में संदेश देने की सेवाएं की गई। क्या संदेश दिया गया? एक बहुत बड़ा हमारा एक उद्देश्य है, भारत हमारा धन से गरीब नहीं है, पैसे से गरीब नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी, चरित्र गिर गया है। आज गांव में इतनी अंधश्रद्धाएं हैं, इतनी कुरीतियां हैं, तो शहरों में भी कम नहीं है, लेकिन गांववासी बिल्कुल उसके पीछे लग जाते हैं। पता नहीं चलता उनको कि ये बीमारी अगर आई है तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ओझा के पास जाएंगे, तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे। अंधश्रद्धाएं हैं, कुरीतियां हैं, कुरिवाज हैं, आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स गांव के अंदर आ गई। गांव गांव में संदेश दिया जाए, इसके लिए गांव का विकास करने के लिए ग्राम विकास प्रभाग बना, बिजनेस विंग की पूरी सेवा हो सके, बिजनेस करने वालों का कल्याण हो, उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, बिजनेस विंग बना। स्पोर्ट्स से खिलाड़ियों को अलग संदेश मिले, उनके लिए स्पोर्ट्स विंग बना। सिक्योरिटी में सेनाएं हैं, उनको संदेश देने के लिए सिक्योरिटी विंग बना। महिलाओं के लिए अलग विंग बना। ऐसे करके 19 विंग के अंदर पूरे ही सेवाओं को हर वर्ग को बांटा गया और उसके अंतर्गत इतनी विस्तृत सेवाएं और इतने अच्छे रूप में हुई, क्योंकि जिस वर्ग को जो जरूरत है वही उनको मिले। जैसे अभी बता रहे थे ग्राम विकास में, गांव के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसानों की है। खेती है हमारे देश का मुख्य व्यवसाय। अगर खेती करने वाले आज केमिकल्स का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, स्वार्थ वृत्तियों के कारण क्या क्या कर रहे हैं, अगर उनको सुधारा नहीं गया तो कितना भी हम खाएं पिए कैसे रहेंगे, बीमारी रहेंगे, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव, मन का तन पर प्रभाव। इसलिए उनके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया शाश्वत योगिक खेती। उनको हम योग के द्वारा खेती करना सिखाएं, ऑर्गेनिक मैनुअल यूज करें, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, तो उनको हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम खेती के साथ कैसे समन्वय करके खेती अच्छी कर सकते हैं, प्रयोग कराए, रिसर्चेज कराई, साइंटिस्ट के पास गए और यूनिवर्सिटीज के अंदर इसकी रिसर्च होने के बाद प्रूफ मिले, और उसके बाद हम लोगों ने पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए प्रोजेक्ट बनाया कि हमारी भावनाओं को प्रकृति बहुत जल्दी ग्रहण करती है और भावनाओं का प्रभाव कैसे पेड़ पौधे और वनस्पति पर पड़ता है। अगर हम बहुत शुद्ध विचारों के साथ पौधे के सामने खड़े होकर बात करें तो पौधा अपने विचारों के आधार से बहुत प्रफुल्लित होता है, अच्छा फल, अच्छी सब्जी, अच्छे फूल देता है। प्रयोग है, रिसर्च है। ऐसे ही हर प्रभाग के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए गए, अलग अलग प्रदर्शनियां बनाई गई और भिन्न भिन्न रीति से अभियान के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, रिट्रीट के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस सत्य ज्ञान को पहुंचाने का अथक प्रयास हमारे भाई बहने कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्यालय, इतनी बड़ी अरेंजमेंट, कोई से कुछ मांगा नहीं जाता, लोगों के भी प्रश्न उठते हैं कैसे चलता है, कहाँ से आता है, कौन देता है। और बाबा ने 4-5 स्लोगन पहले दिन पक्के कराए थे। पहला स्लोगन बाबा का शुरू से रहा, इतना बड़ा बेगरी पार्ट शुरू हो गया, बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाना, तुम सांसा के बच्चे हो, राजाओं के राजा के बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, मांगने से मरना भला, मर जाएंगे मांगेंगे नहीं, किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, कोई डोनेशन चंदा नहीं लेना, ये बाप का घर है, भगवान का दर है, तुम प्यार से सेवा करो अपने आप भर जाएगा, ज्ञान रतन दान करो अपने आप रिटर्न मिल जाएगा। ये विद्यालय इसी आधार से चल रहा है, कोई से मांगता नहीं, कोई पेटी आपके सामने नहीं रखी गई, लेकिन कर्म फिलॉसफी हमेशा पढ़ाई के अंदर सिखाई जाती है। अगर बाबा के बच्चे 9 लाख हैं, इस समय हमारे विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं वो 9 लाख से भी अधिक हैं, 10 लाख हम कहते हैं, लेकिन पक्के कच्चे करीब 8-9 लाख होंगे, संबंध संपर्क वालों को मिला के 10 लाख कहते हैं। अगर 10 लाख भाई बहने 1 रुपया रोज निकालें इस हेडक्वार्टर के लिए, तो हेडक्वार्टर को चलाने मुश्किल हो सकता है। और जो विद्यार्थी बनता है, जो इस विद्यालय में आता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, अंडा या अन्य प्रकार का फैशन, दिखावा, बहुत सारी बातें दुनिया के अंदर लगी हैं। आज इसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास भी हो, आज इसके पास ये साधन है, मेरे पास भी हो, इसके पास ये फ्रिज है तो मेरे पास इससे अच्छी हो, भेंट कर रहे हैं। लेकिन जब सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो ये सब प्रकार की रेस और रीस बंद हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, 2 रोटी खानी है, प्रभु के गुण गाने हैं। हमारे जितने वेस्टेज थे, जितने व्यर्थ खर्चे थे, गरीब से गरीब परिवार जब ज्ञान ले लेता है, आप अगर उसके पास 6 महीने के पास पहुंच जाएंगे, बाद में कहेंगे इस तो बहुत साहूकार है, क्योंकि उसकी सब वेस्टेज बंद है, कोई खर्चा व्यर्थ ही नहीं, और रोटी खाने के लिए सबके पास बहुत है। इसलिए अगर वो सिर्फ अपनी दाल रोटी खाता है, प्रभु के गुणगाता है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर उसकी शौक मौज बहुत है, दिखावा बहुत है, ये उधर उधर की बातों में पैसा जा रहा है, तो गरीब है। इसलिए ज्ञान माना समझ, और जब ज्ञान मिल जाता है, समझ मिल जाती है व्यक्ति को, तो उस समझ के आधार से अगर कोई चलता है तो कभी उसके पास कमी नहीं पड़ती। इसलिए इस विद्यालय के अंदर ये बहुत सुंदर ज्ञान समझ दी जाती कि यदि आपका यहां से जीवन बना, आपने अपनी बचत की है, तो पहले अपने परिवार को सुखी करो और फिर कुछ सेवाओं के लिए सफल करो। ये बीज बोने का समय है। अगर आप श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना चाहते हो तो कुछ धन इस सेवा में लगाने से आपका भाग्य बन जाएगा। आप सदा के लिए भगवान के कार्य में मदद करेंगे तो भगवान आपको रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। इसलिए इस विद्यालय के अंदर चाहे जिस परिवार से आए, चाहे जितना पैसे वाला हो या गरीब हो, हर एक को एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी पालना, एक जैसा ज्ञान दिया जाता, जो जिसको करना है खुले दिल से बिना किसी को बताए। बाबा का एक स्लोगन शुरू से रहा, खुद बाबा ने जो किया, बच्चे इस हाथ से करो, इस हाथ को पता नहीं चले, माना करने के बाद किसी को वर्णन नहीं करना, मैंने 100 रुपया किया, मैंने 5000 किया, कितना भी करो तुम्हारा घर है। गुप्त दान महापुण्य। और बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, किसी के आगे नहीं कहा कि मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया, मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, मेरा बिजनेस इतना बड़ा था, बाबा ने बच्चे मैंने क्या किया, ये तो कौड़ियां थी, सफल हो गई मेरी, बाबा अपने आप इसका रिटर्न करेगा। तो बाबा दाता है, वो किसी से मांगता नहीं है, सबको देता है। और जो बाबा के कार्य में अपना तन मन धन लगा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे परिवार हैं, आप कभी कह भी नहीं सकते, लेकिन वो गुप्त रीति से बाबा की भंडारी में डालते हैं। पूरे सेंटर्स का हिसाब यहाँ रहता है, अकाउंट रहता है, किसके पास कितनी किस सेंटर की बचत है। अगर हम उनको डायरेक्शन देते हैं कि इस बचत को यहाँ पर लगाओ, तो फौरन वो सफल करते हैं, लगाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के हम योजनाएं बनाते, मीटिंग होती है साल में एक बार, वार्षिक मीटिंग, करीब 1500 लोग उस मीटिंग में उपस्थित होते हैं, सभी सेंटर्स के मुख्य होते हैं, पूरे साल के लिए मैनेज करते हैं प्रोग्राम, इस साल की ये थीम है, इस साल की ये थीम है, और उस थीम के अंतर्गत कितने अभियान निकालने हैं, कितनी प्रकार की सेवाएं करनी है, कौन सा विंग क्या सेवाएं करेगा, साल में एक बार मीटिंग करके फुल साल की प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग के बाद बजट बनाते हैं, कितना खर्चा होगा, इतना हम दे सकेंगे, इतना हमारे पास है, तो उसके आधार से सेवाएं होती हैं, उसके आधार से ही यज्ञ हमारा, बाबा का ये घर यज्ञ हम कहते हैं, भगवान का घर है, बहुत निर्विघ्न रूप से चलता है, और हरेक की एक भावना रहती है। यहाँ पर कोई जो समर्पित भाई बहने हैं, कोई भी पेड सर्वेंट के रूप में काम नहीं करते। एक बार यहाँ पर 2 VIP आए थे मेरे इस ग्राम विकास प्रभाग के विंग में, मिनिस्ट्री के थे, कुछ यूनिवर्सिटीज के थे, मैंने कहा कि चलो आपको हम घर दिखाते हैं। घर दिखाया, घर में उनको बताया कि देखो कैसे अनाज कहाँ से आता है, ये मसाले कहाँ से आते हैं, हम लोगों के कपड़े कहाँ से आते हैं, सब चीजें उन्होंने देखी, और इतनी व्यवस्थित, कोई को कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है, देख करके, सब कुछ देख करके, कहते इनको संभालता कौन है, मैंने कहा ये भाई संभालता, परिचय कराया, ये इसको संभालता है, ये इसको संभालता है, ये इसको संभालता है, कोई पैसा नहीं लेता है, सब फ्री है सेवा। कहता मैं इतना पैसा देता हूँ फिर भी नहीं संभालते लोग, और ये बिना पैसे संभाल रहे हैं, ये सरेंडर है, ये भगवान के आगे इन्होंने अंडर किया अपना सिर कि बाबा जो करो जैसे करो, हम 8 घंटे वाले नौकर नहीं है, हम 16 घंटा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने जीवन दी है यहाँ। तो जब हम लोगों ने 42 साल 40 साल से जीवन दी है, तो जो सेवा करेंगे, जो सेवा हमको मिल जाएगी, हम हाजी करेंगे, और हमको रिटर्न में जो चाहिए देगा। हमको क्या चाहिए, 2 रोटी खाएंगे, 2 कपड़े पहनेंगे, और मौज से रहेंगे, नो टेंशन। तो बाबा के घर में हम लोग सेवाएं जो दे रहे हैं, करीब 1000 इस समय स्टाफ समर्पित है, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति वन, हॉस्पिटल, 4 बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे स्थान हैं, अधिकतर सब समर्पित भाई बहने, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, चाहे एकोमोडेशन देख रहे हैं, सफाई फाई के लिए थोड़े से इस समय मजदूर हैं, बाकी सब कार्य अपने तन मन से कर रहे हैं और धन उनका सफल हो रहा है। तो इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, विस्तार कैसे हुआ और कैसे बाबा अपने बच्चों को ज्ञान और योग से अभी तक पालना दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली हो जो समय के पहले भगवान के दर पर पहुंच गए। भगवान ने आप सबको चुना है, सेलेक्ट किया, समझते हो आप सभी, भगवान की सिलेक्शन के अंदर इस धर्म घर पर आए हैं। बिना सेलेक्ट किए हुए यहां कोई पहुंचता नहीं है। किसलिए सिलेक्शन हुई है? भगवान ने आप में कुछ विशेषताएं देखी हैं, उस सतयुगी दुनिया के आपको मालिक बनाने के लिए यहां बुलाया है। ये बन सकते हैं बच्चे, यही देवता बने थे, इनको मैं फिर से बना दूंगा। ये देवता बनाने की कॉलेज है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, मनुष्य को देवता बनाने की यहाँ पढ़ाई होती है और आप सब उस विद्यालय के अंदर प्रवेश ले चुके हैं। इसलिए मैं आप सब की ओर से ये कहूंगा कि आप अपने लिए भी ताली बजा लें। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केवल चार सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट में यदि आप नंबर वन आ जाएंगे तो आपको बाबा अपनी 8 की माला में, 108 की माला में पिरो लेगा। चार सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, समझ, और ज्ञान के अंदर मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, मुझे क्या करना है, ये ज्ञान है। और बहुत स्पष्ट रीति से ज्ञान हम सबको रोज पढ़ाया जाता है मुरली के माध्यम से। दूसरा सब्जेक्ट है योग, कैसे किया जाए, कोई हट क्रियाएं नहीं है, व्यायाम नहीं है, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं है, लेकिन बुद्धि परमात्मा से कनेक्शन जोड़े और वो भी रिलेशन के आधार से कनेक्शन। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा शिक्षक है, हम उसके स्टूडेंट है, वो हमारा गुरु है, हम उसके फॉलोअर है। सर्व संबंध अगर एक बाप के साथ, परमात्मा के साथ हम जोड़ लेते हैं तो योग हमारा सहज और स्वतः हो जाता, और जिसका योग उसके साथ है, भगवान के साथ हम कनेक्ट हैं, तो कनेक्शन पावर हाउस से है तो हमारे पास लाइट होगी ही, कमजोरी आ ही नहीं सकती। इसलिए कनेक्शन परमात्मा के साथ है, इसलिए हम सब कर्मेंद्रिय जीत हैं, विकारों पर जीत हो रही है, कोई विकार सताते नहीं है, आते हैं समाप्त हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति अपना काम करती है। मेहनत करोगे वैसे, अगर भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, योग करना नहीं सीखोगे तो आपको मेहनत लगे, इन विकारों को इस कलयुग में जीतना संभव नहीं है। अगर सचमुच जीतने का लक्ष्य रख करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परमात्मा की सवेरे सवेरे शक्ति लेनी होगी, योग करना पड़ेगा। एक घंटा भी आप अच्छी तरह से योग कर लो, 23 घंटे के लिए आपको बल मिल जाएगा। जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, मोबाइल को चार्ज ना करो एक घंटा और कहो हम 24 घंटा बात करेंगे, कर सकते हैं? कैसे करेंगे? एक घंटा तो कम से कम चार्ज करो। तो चार्ज अगर एक घंटा आप सवेरे सवेरे अपनी बैटरी को कर लेंगे तो 24 घंटा कोई बातें आएंगी आप पार हो जाएंगे। इसलिए योग है दूसरा सब्जेक्ट। और तीसरा सब्जेक्ट ये है, जो देवताओं के गुण हम गायन किया है, कितनी मधुरता है, कितनी सरलता है, कितनी सहनशीलता है, कितनी हर्षित मुक्ता है, सब गुण उनके अंदर हम गाते आए, सर्व गुण संपन्न हम कहते हैं, वो गुण गाना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है, वो दैवी गुण की धारणा। धारणा ही हमारा धर्म है। हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, हम सिख नहीं है, हम ईसाई नहीं, हमारा धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। अगर इस धर्म को अपना लिया तो सब धर्मों में होते हुए भी हम एक पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं, ये हमारी धारणा है। और चौथी सब्जेक्ट जो हमने पाया है वो हम दूसरों को बांटे हैं, सेवा, ईश्वरीय सेवा। सेवा माना सुख देना, सुख लेना। तो परमात्मा ने हमको सुख देना और सुख लेना सिखाया है, ये सेवा हम करते। जहां पर भी कोई डिस्टर्बेंस हो उसको सेवा नहीं कहा जाता। इसलिए सेवाधारी जो सेवाएं करें वो मन से प्रफुल्लित हों और अपनी ऊंची धारणाओं से, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से एक दूसरे की सेवा करें। इसलिए आप यहां देखेंगे चेहरे पर, किसी की सेवाधारी के चेहरे पर उलझन, टेंशन, चिंता दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बहुत प्यार से भगवान का दिया हुआ दे रहे हैं सबको, अपना तो दे ही नहीं रहे, उसने हमको दिया है बांट रहे हैं, इसलिए सच्चे दिल की सेवा। तो ये चार सब्जेक्ट में अगर नंबर आगे आ जाएं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, तो लास्ट आते भी आप सब के ऊपर बाबा की उम्मीद है, बाप और दादा, शिव बाबा हमारा आत्मा का बाप और ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई दादा, समझ गए, बाप दादा, शिव बाबा बाप पिता है और ब्रह्मा बाबा दादा है, बड़ा भाई है। तो बाप दादा की आस है मेरे एक एक बच्चे को लास्ट आते भी फास्ट जाना है और फास्ट जाकर के फर्स्ट आना है। तो मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि भले आप अभी लास्ट में आए हो, लास्ट ये कलयुग की बहुत अति हो रही है, पाप बढ़ रहे हैं, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, लास्ट के समय में आए हैं, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी तीव्रता की लगन लगा लो जो आप फर्स्ट आ जाओ, फास्ट आकर के फर्स्ट आ जाओ, ठीक है। तो बाबा की आस है और जरूर आप सभी बाबा की, शिव बाबा की आस पूरी करके दिखाना। ओम शांति।